नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी पिनामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरवप्रिय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
कुर्सी ला देनी चाहिए कोने में। आप दादाजी प्रभु कुर्सी पर बैठे हैं, हम दिक्कत होते हैं, कुर्सी ला देना चाहिए किनारे।
श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो जस्मात् त्वां ये जथार्चन्ति सात्वतः सात्वतर्षभ। श्री उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो जस्मात् त्वां ये जथार्चन्ति सात्वतः सात्वतर्षभ। एतद् वदन्ति मुनयो मुहुर्निः श्रेयसं नृणाम् नारदो भगवान् व्यासः आचार्यों गिरसः सुतः।
श्रीमद्भागवतम् में सॉरी प्रभुजी, आई एम गोइंग टू स्पीक हिंदी। श्री उद्धव जी ने भगवान के श्री विग्रह के आराधना के विषय में प्रश्न किया है। इसका शीर्षक है लॉर्ड कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस ऑन द प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप। उसी में से कुछ श्लोक मैं ले रहा हूं। श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं द्वारका में कि हे प्रभो भवदाराधनम क्रियायोगम समाचक्ष्व, आपकी आराधना भवत आराधनम, आप जिससे प्रसन्न होते हैं संतुष्ट होते हैं, तो आपको संतुष्ट करने के लिए जो क्रियायोग है जिसको अर्चा विग्रह सेवा कहते हैं, तो उस क्रियायोग के विषय में हमें बताइए। जस्मात् त्वामे जथा अर्चन्ति सात्वतः सात्वतर्षभ। हे सात्वतों में सर्वश्रेष्ठ, हे भक्तों के पालक, सात्वत गण भक्त लोग जिस प्रकार से जथा अर्चन्ति जैसे आपकी अर्चना करते हैं वो प्रकार बताइए। भगवान के श्री विग्रह की पूजा करनी है पर सभी विषय में भगवान ही बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। अज्ञ जीवों को कुछ भी पता नहीं, सब बिल्कुल ब्लाइंड हैं। वैसे तो इतने ब्लाइंड हैं, इतने अज्ञ हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं भगवान का आकार ही नहीं है। तो भगवान बताते हैं कैसे उनका अर्चा विग्रह बनाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, पुजारी को कैसे रहना चाहिए। तीन चीज है, भगवान को कैसे स्थापित करना चाहिए, पुजारी कैसा होना चाहिए और पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। तीन बात जानना बहुत आवश्यक। पुजारी के भी विषय में, मतलब भगवान के श्री विग्रह की जो आराधना करता है उसके भी विषय में बातें बताई गई है। सवेरे उठे और शौचादि क्रिया से निवृत्त हो, मुंह धोवे, धौत दंत शब्द साफ आया, दांत अच्छा तरह से धोवे, स्नान करे और इसके बाद शुद्ध हो, तिलक करे, स्मरण करे, तब भगवान के मंदिर में जाए, पट खोले, उसके बाद क्या क्या करे। तो उद्धव जी पूछ रहे हैं कि आप क्रिया योग का वर्णन कीजिए, जो डायरेक्ट भगवान के सेवा के लिए की जाती है, जिससे भवत आराधनम आप प्रसन्न होते हैं। आराधना का अर्थ होता है किसी को खुश करना, तो आप खुश हो जाते हैं। जैसे सातवतों का स्वभाव होता है, जैसे पूजा करते हैं, वो कृपा करके बताइए। आगे वे कहते हैं उद्धव जी, एतद् वदन्ति मुनयो, इस विषय में सभी मुनियों का मत है कि मुहुः निःश्रेयसं नृणाम्, मनुष्यों का परम कल्याण करने के लिए श्री विग्रह की आराधना सबसे श्रेष्ठ साधन है। सभी मुनि ऐसा कहते हैं, किसी का प्रतिवाद नहीं है। जो मुनि नहीं होते हैं वास्तव में मूर्ख होते हैं, वही लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो मुनि लोग तो कहते हैं कि मुहुः निःश्रेयसं नृणाम्, मनुष्यों का हित करने के लिए श्री विग्रह की आराधना परम साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के पांच अंगों को महासाधन कहा है। उसमें है श्रद्धा से श्री विग्रह की सेवा, नाम संकीर्तन, मथुरावास, ब्रजवास और सजातीय वैष्णवों का संग, और श्रीमद् भागवतम के अर्थ का स्वादन। ये पांच महासाधन है, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इनमें से एक का भी थोड़ा भी कोई अभ्यास करे तो उसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। जैसे नाम संकीर्तन, कोई प्रेम से भगवान के नाम को गा रहा है जप रहा है, उसको प्रेम मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसी तरह से भगवान के सेवा में, श्री विग्रह की आराधना में किसी की निष्ठा है तो उसका परम हित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। या कोई व्यक्ति ब्रजवास कर रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई वैष्णव की सेवा कर रहा है, संग कर रहा है, ये साधन बहुत बलवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बलवान साधन, बहुत वेरी स्ट्रांग पावरफुल साधन। तो इन पांचों में से कोई एक का भी अभ्यास करे तब भी कल्याण हो जाएगा, फिर पांचों का करे तब तो कहना ही क्या। तो श्री उद्धव जी कहते हैं श्री भगवान से, एतद् वदन्ति मुनयः, मुनयः एतद् वदन्ति, सभी मुनि ऐसी बात कहते हैं, मुहु निःश्रेयसं नृणाम्, कि मनुष्यों का परम हित है भगवान की आराधना करने में। कौन कौन मुनि कहते हैं, तो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ का नाम ले रहे हैं, नारदः भगवान व्यासः आचार्यों गिरसः सुतः, तीन का नाम ले रहे हैं उद्धव जी, भगवान नारद, भगवान वेदव्यास देव और अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी, जो मेरे गुरु हैं। उद्धव जी के डायरेक्ट गुरु हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति जी स्वर्ग में गए थे पढ़ने के लिए, इधर भारत से या कहीं और से कोई आता है इंग्लैंड पढ़ने तो बहुत नाम होता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। उद्धव जी पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में गए थे पढ़ने के लिए, न्याय पढ़ने के लिए गए थे। उस समय भगवान के बाद इस विश्व में अगर कोई विद्वान था तो वो उद्धव जी थे। इसीलिए तो गोपियों को सांत्वना देने के लिए भगवान अपने बदले में उद्धव जी को भेजे, और पूर्ण समर्थ थे गोपियों का शोक दूर करने में। उद्धव जी बहुत महान पुरुष, महान, इसी कारण से तो भगवान के सेक्रेटरी हैं, सखा हैं। उद्धव जी भगवान के समान हैं बिल्कुल। एक ग्रंथ में, पद्म पुराण में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उद्धव में और मुझ में अणु मात्र भी कमी नहीं है, बिल्कुल इक्वल, एक समान, ऐसा वो कहते हैं। और इसी कारण से ब्राह्मणों के शाप से बचा लिया भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को, मरने नहीं दिया, कहा कि तुम जाओ बद्रिकाश्रम प्रचार करो, यही कहा। तो उद्धव जी यहां कह रहे हैं कि मुनियों का यह मत है, जितने भी अभिज्ञ विद्वान हैं संसार में सबका यह मत है कि श्री विग्रह की आराधना करनी चाहिए, ड्यूटी वर्शिप करना चाहिए। तो उनमें तीन का नाम ले रहे हैं उद्धव जी, व्यासदेव, श्री नारद मुनि और बृहस्पति जी। बृहस्पति जी समस्त देवताओं के गुरु हैं, अंगिरसह सुत, अंगिरा के पुत्र। तो इस प्रकार अब अपने गुरु को भी डायरेक्ट कह रहे हैं। शास्त्र कहता है, यह जैसे कहा गया है कि शास्त्र, गुरु और साधु, तीन की जब मति एक हो तो प्रमाण है। और खास करके साधु और गुरु इस शास्त्रों के बात को लोक में कहते हैं देश काल के अनुसार, असली प्रमाण तो शास्त्र प्रमाण है। तो साधु समाज भी कह रहा है, गुरु भी कह रहा है, और शास्त्र तो कहता ही है, ये प्रमाण है। तो यहां पर समस्त साधुओं के विषय में उद्धव जी कहते हैं, सभी कहते हैं कि डीटी वर्शिप करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। और अपने गुरु को भी कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने भी कहा है, अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी। तो निःश्रुतम ते मुखाम हो जा जदाह भगवान अजर। और हमें ये पता है, सभी ऋषि कहते हैं कि आपके श्री विग्रह की आराधना के विषय में जो भी सिद्धांत है वो आपके श्रीमुख से ही पहले निकला। निःश्रुतम ते मुखाम भोजात, आपके मुख अम्भोज से, कमल से निकला। सबसे पहला उपदेश भगवान ने किया है श्री विग्रह की आराधना के विषय में। जदा भगवान अज, तो आपके मुख से निकला, कौन सुना सबसे पहले? भगवान अज, श्री ब्रह्मा जी। और पुत्रेभ्यो भृगु मुखेभ्यो देव्य च भगवान भव, तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने पुत्रों से कहा, भगवान के पूजा के विषय में अपने पुत्रों से कहा। पुत्रों में भृगु जी का नाम प्रधान कहा जाए, भृगु मुखेभ्यो, इसमें भृगु जी मुख्य हैं। और ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को कहा, भृगु जी को कहा, शिव जी को कहा, शनकादि को कहा, नारद जी को कहा। ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े आचार्य हैं, उन्होंने कहा। तो उस बात को देव्यै च भगवान भव, और भगवान भव, भगवान शिव, फिर देवी पार्वती जी को कहे। उन्होंने कहा कि देवी इस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये सीखने की बात है, पुरुषों को चाहिए कि वे सीखें श्री विग्रह की पूजा और अपनी अपनी पत्नी को सिखाएं। ऐसा नहीं कि पत्नी ही सिखाना चालू करे, ये तो उल्टा है। फिर वो भी ठीक है, ज्ञान चाहे पत्नी द्वारा हो चाहे पति द्वारा हो, दोनों को होना चाहिए। लेकिन भगवान शिव है, गुरु हैं अपनी पत्नी के, पार्वती जी के। क्योंकि भगवान शिव और पार्वती जी कोई काम धंधा नहीं करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं, हमेशा कृष्ण कथा में रहते हैं, हमेशा कृष्ण कथा। शिव जी को का जब भी वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, तो यही वर्णन है कि वो कथा कह रहे हैं। और नारद जी कोई प्रश्न किए हैं तो शनकादिक प्रश्न किए हैं, चाहे माता पार्वती जी प्रश्न कर रहे हैं, सब स्पिरिचुअल प्रश्न भगवान के विषय में। दुनिया के विषय में कोई बात भगवान शिव नहीं करते, और न तो भगवान शिव के घर में एक भी न्यूज पेपर जाता है, न टेलीविजन है, ये कुछ नहीं है। इसकी क्या जरूरत है, सब फालतू चीज है। वास्तव दिमाग को कचड़ा से भरने की व्यवस्था है, कुछ आंख से भरे, कुछ कान से भरे, कुछ मुंह से भरे, ज्यादातर आंख से और कान से भरते पढ़ करके, ये चीज निकला, ये चीज निकला, ये सुना, ये सुना। भगवान शिव हमेशा एंगेज रहते हैं भगवान की पूजा में, तो वे अपनी पत्नी से कहे, एतद् वै सर्व वर्णानाम आश्रमाणाम च सम्मतम। और ये तद, यह डीटी वर्षित सभी वर्णों के लिए है और सभी आश्रमों के लिए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सन्यासी को ये डीटी वर्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि घूमता रहता है, ये रहता है, वो रहता है। पर यहां आप साफ समझ रहे हैं, उद्धव जी कहते हैं एतद् वै सर्व वर्णानाम, सभी वर्णों के लिए है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबके लिए डीटी वर्शिप है और सभी आश्रमों के लिए है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी सबके लिए अनिवार्य है। एतद वही सर्ववर्णानाम आश्रमाणाम च सम्मत श्रेयसाम उत्तमम मन्ने स्त्री शूद्राणाम च मानद। यहां तक सभी वर्णों के लिए है लेकिन श्री उद्धव जी स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए कह रहे हैं यही सबसे बड़ा साधन। तो उनके कहने का आशय यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं शास्त्रों को उनके लिए तो डीटी वर्शिप ही आधार है, भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध हो जाता है। श्रृंगार करने में, भोजन पकाने में, भगवान को सुलाने में, जगाने में, स्नान कराने में, गीत गाने में, इस तरह से मतलब यह सबसे सुलभ और सबसे आसान साधन है। भगवान को अपने घर में रह करके और उनके लिए कुछ किया जाए, जैसे उनको जगाना, सुलाना, बीच में श्रृंगार करना, कभी कीर्तन गाना, गीत गाना और कई तरह से भगवान की सेवा पूजा होती है, जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्धव जी जैसे महान पुरुष श्री भगवान से साक्षात कह रहे हैं कि श्रेयसाम उत्तमम मन्ने, जितने भी श्रेय हैं, कल्याणकारी साधन है, उसमें श्री विग्रह की पूजा उत्तमम मन्ने, मैं उत्तम मानता हूं। किसके लिए? स्त्री शूद्राणाम च मानद, हे सबका सबको मान देने वाले हे प्रभु, स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए भी यही साधन है सबसे बढ़कर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सबको ड्यूटी वर्शिप नहीं करना चाहिए, वो वास्तव में अज्ञ है, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि शास्त्र क्या कह रहा है। स्पष्ट यहां बोल रहे हैं उद्धव जी, एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबंध विमोचनम् भक्ताय चानुदत्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे विश्वेश्वर ईश्वर, विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर, और हे कमलनयन, कर्मबंध का विनाशक यह डीटी वर्ष, यह श्री विग्रह की आराधना बहुत सुंदर है, कृपया हमसे आप बताइए। मैं आपका भक्त हूं, भक्ताय च अनुरक्ताय, केवल आपका भक्त ही नहीं हूं, मैं आपका प्रेमी हूं, आप में अनुरक्त हूं। दो बात करें, भक्ताय च अनुरक्ताय, मैं आपका भक्त हूं और आप में अनुरक्त हूं, आपके ही पीछे रहता हूं और आप में हमारी पूर्ण श्रद्धा है, आप ही हमारे जीवन का लक्ष्य हैं, तो आपसे मैं ये बात सुनना चाहता हूं। तो श्री भगवान कहते हैं, न ह्यन्तो नन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य च उद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावद् अनुपूर्वशः। हे उद्धव, श्री विग्रह के आराधना के विषय में मेरे प्रति जो कर्म किया जाता है उसके विषय में क्या बताया जाए, बहुत बहुत काम है, बहुत बहुत अनंत पार है, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ कह रहा हूं, सुनो। भगवान यहां श्री विग्रह की आराधना के विषय में संक्षेप में बोल रहे हैं, वैदिक तांत्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः त्रयाणाम इप्सिते नैव विधिना माम समाचरेत समर्चरेत। वैदिक, तांत्रिक और मिश्र, ये तीन प्रकार से मेरी पूजा की जाती है। वैदिक, तांत्रिक, तो वैदिक का अर्थ है वेदों की स्तुतियों को गाना मेरे लिए, जैसे गोविंदम आदि पुरुषम या महामंत्र का कीर्तन, श्रीमद् भागवतम सुनना पढ़ना, इसकी व्याख्या करना, यह है वैदिक विधि। और तांत्रिक विधि है, तंत्र का अर्थ होता है कुछ कर्म, ये जो प्रचलित तांत्रिक विधि नहीं ये दूसरी बात। तांत्रिक अर्थ है कि कुछ क्रियाओं के द्वारा श्री विग्रह की पूजा, भगवान का मंदिर बनाना और भगवान की पूजा करना, आगे वो समझाएंगे, तंत्र का ये मतलब है। और मिश्र, मिश्र का अर्थ है दोनों, वैदिक भी किया ये भी किया, जो भगवान का कीर्तन गाया, स्तुति किया, भागवत पढ़ा और पूजा भी किया, इसको मिश्र कहते हैं, मिला हुआ। ये तीन प्रकार की विधि मेरे द्वारा कही गई है। त्रयाणाम ईप्सिते नैव विधिना माम समाचरति, तीनों का जथा योग निर्वाह करते हुए विधि के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। जदा स्वनिगमे नोक्तम द्विजत्वम प्राप्य पुरुषः जथा जजेत माम भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे। निगम के अनुसार, वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो मेरी पूजा करना चाहता है उसे चाहिए कि वो द्विजत्व प्राप्त करे, द्विज बने। द्विज का अर्थ दो बार जन्मा हुआ, एक बार तो सभी जन्म लिए ही हैं, माता पिता से एक बार सबका जन्म हुआ है, दूसरा जन्म होता है आचार्य से, गुरु से। उससे जब हम वैदिक नियम सीखते हैं, भगवान की पूजा के बाद सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है कि ईश्वर है, ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, इसको दोबारा जन्म कहा गया। पहला जन्म में और मैं तो कोई विशेषता नहीं हुआ, ऐसा जन्म तो कुत्ते और बिल्ली भी लेते हैं पहला जन्म, गाय भैंस भी जन्म लिए हैं एक बार तो भी जन्म लिए हैं, लेकिन वो द्विज नहीं हो सकते हैं। पर मनुष्य द्विज हो सकता है, संस्कार प्राप्त करके दोबारा जन्म लेता है। तो इस तरह से द्विज होकर के संस्कार प्राप्त करके विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। भगवान दोनों शब्द कारण भक्त्या श्रद्धाया, भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। ये विश्वास रखिए कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और हमारी पूजा को लेने के लिए ही वे अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट। भगवान बारंबार इस बात को कहते हैं श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई देखे और मूर्ख व्यक्ति अश्रद्धालु कह दे क्या ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं, क्या धातु की पूजा कर रहे हैं, या जगन्नाथ जी को देख करके कहे क्या लकड़ी की पूजा कर रहे हैं। इस तरह से कहना बहुत बड़ा अपराध है, इसके पीछे साइंस है, सिद्धांत है, भगवान प्रकट होते हैं उस वस्तु में। तो पूजा कैसे करनी चाहिए भगवान की, ये कहते हैं अर्चायां स्थंडिलग्नौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजः द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चेत् स्वगुरुं माम माया। आचार्य में पूजा कभी कभी ऐसे भी की जाती है, भगवान की पूजा अगर करना है और कदाचित आपके पास अर्चा विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो ऐसे करना चाहिए आचार्य में पूजा करनी चाहिए। आचार्य जिसने भक्ति की बातें बताया उसमें भगवान को देखकर पूजा करनी चाहिए। पूजा भगवान की करनी है, अस्थंडिलय या किसी वेदी में मिट्टी का ऊंचा भाग है उसमें भगवान की भावना करके पूजा करनी चाहिए। अग्नौ अग्नि में भगवान रहते हैं, सूर्य या सूर्य में, अप्सु जल में, या हृदय हृदय में। पूजा कैसे करनी चाहिए, द्रव्येण भक्ति युक्त अर्चित, द्रव्य से पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग ये सिद्धांत बनाते हैं कि भगवान तो दुनिया को खिला रहा है तो उसको क्या खिलाना है, भगवान दुनिया को दे रहा है तो उसको क्या देना है, ये सिद्धांत बनाते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि भगवान में और भोजन में कोई भेद नहीं है, सर्वम खलु इदम् ब्रह्म, सब ब्रह्म है, तो पूरी भी ब्रह्म है, मूर्ति भी ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म को दूसरे के मुख में क्यों डाला जाए, दूसरे ब्रह्म के मुख में, ऐसे कहते हैं। एक पद में सुना था, गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं तो बहुत परेशान हूं कि आपको कैसे खुश करूं। वो व्यंग था मूर्ति पूजा पर। शास्त्र कहता है कि आप तो ब्रह्म है ही और जो कुछ भी धरती में है सब ब्रह्म है, तो दूध फल चावल रोटी या सब प्रकार की मिठाइयां, ये सभी ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म को मैं ब्रह्म को कैसे खिलाऊं और फूल ब्रह्म को मैं मूर्ति ब्रह्म पर कैसे चढ़ाऊं। एक बार एक व्यक्ति हमसे ये पद सुना करके लगा बहस करने। तो मैं क्या कहा, अच्छा ठीक है। मैं कहा कि मैं मन में सोच लिया कि उत्तर दूंगा। तो जब हम लोग खाने बैठे तो मैं कहा कि तो तुम ब्रह्म हो ना? तो हाँ। इस सामने परसा हुआ रोटी और भाते भी ब्रह्म है ना, इसको अपने भीतर क्यों खाने जा रहे हो? क्यों ऐसे कर रहे हो? एक ब्रह्म को दूसरा ब्रह्म क्यों चबाने जा रहा है? तो कहा कि अरे भाई, बातें तो बहुत होती हैं, सिद्धांत कुछ और होता है, हम थोड़े भगवान हैं। वो कहता है तो लोगों की ये धारणा है कि भगवान को क्या देना है, उनको क्या कमी है, तो दुनिया को खिला रहे हैं। लेकिन वास्तव में सिद्धांत ये है कि दिया जाता है उसी को जिसने दिया है। ये सिद्धांत है संसार में। जो नहीं दिया है उसको कोई नहीं देना चाहता, ये सिद्धांत है। तो भगवान ने सब कुछ दिया है, इसलिए उन्हीं को देना चाहिए। सब कुछ तो उनका दिया है। माता पिता बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, तो देना होगा तो कह देंगे कि अरे यही तो पाल पोस कर बड़ा किए, इनको क्या देना है, किसको दोगे? अगर कुछ अपने पास होगा तो माता पिता को नहीं देकर किसको ले जाकर के दोगे? भाई जो दिया है उसी को देंगे ना। इस संसार में संबंध देखा जाता है। तो जब भगवान खाने की व्यवस्था किए हैं, पीने की व्यवस्था किए, सब कुछ दिए, जीवन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो जो जीवन में हमको मिलता है वो भी उन्हीं को दिया जाएगा, भगवान को दिया जाएगा। सिद्धांत है। ऐसा नहीं मानना चाहिए भगवान दुनिया को खिला रहा है तो उसको क्या खिलाना है और स्वयं रोज खाना है। ऐसे आलसी लोग होते हैं और इतने खाने वाले। एक व्यक्ति से मैं पूछा कि आप चतुर्मास करते हैं? तो कहता है कि हाँ चतुर्मास करते हैं। क्या करते हैं? तो एक दिन में चार बार खाते हैं, ये चतुर्मास है हमारा। और भाई चतुर्मास का अर्थ है कि एक टाइम खा ले, नियम से रहे। वो कहता हाँ चतुर्मास करते हैं, चतुर्मास के हम 12 महीने चतुर्मास करते हैं, एक दिन में चार बार खाते हैं। और चार बार खाओ चाहे 8 खाओ, कितना काम किए। किसी कार में आदमी घंटे घंटे पेट्रोल भरता रहे और 1-2 माइल भी न जाए तो फायदा क्या है? कुछ लोग इसी तरह से बहुत खाते हैं लेकिन माइलेज बहुत कम देते हैं, कोई काम नहीं करते। और कुछ लोग तो थोड़ा खा कर कहीं बहुत काम करते हैं, है ना? देखा गया। एक टाइम खाने वाले क्या 4 खाने वालों से कम काम करते हैं? ज्यादा करते हैं, देखा गया। तो वास्तव में भगवान के ही विषय में सोचना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको खुश करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान भक्त का लक्षण बताते हैं। पहले पूर्वम स्नानम प्रकुर्वित, सबसे पहले पूर्वम स्नानम प्रकुर्वित, स्नान करे, प्रकर्षण कुर्वित, ढंग से स्नान करे। स्नान करने के पहले धौत दंत, ब्रशिंग करे, मुंह धो ले। वैसे तो भगवान दातुन करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सब पेस्ट फेस्ट करे। इधर देश काल के अनुसार अब करना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में दातुन करने के लिए कह रहे हैं। हरिभक्ति विलास में दातुन का भी वर्णन है, 30 वृक्ष की दातुन हो, कितना लंबा हो, कैसे चबाए, कैसे करे, अंग शुद्ध है। और उभय रपि च स्नान मंत्र मृद ग्रहणात्म, और स्नान दोनों प्रकार से करना चाहिए। मृद ग्रहण शरीर में मिट्टी लगा करके, और मंत्र भी पढ़े, मंत्र स्नान भी करना चाहिए साथ साथ। और कोई चुपचाप नहा रहा है तो शुद्ध नहीं होता है, महामंत्र भी बोलना चाहिए, हरे कृष्ण जय गंगे जय गंगे। ऐसा करने से तब व्यक्ति शुद्ध होता है। जल से भी स्नान करें और मृद ग्रहण आदि ना, मृद ग्रहण का तो मिट्टी लगाना, अब तो मिट्टी के बदले साबुन लगा ही रहे हैं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसमें चर्बी ना हो पशु, इतना ध्यान रखना चाहिए, इतना ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं हमको तो साबुन से मतलब है, चाहे जैसे भी बना हो, ये सब चीज का कर्मबंधन लगता है, पाप लगता है, ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। हमें साबुन लगाना है ठीक है, लगाएंगे लेकिन अपनी बुद्धि से देख लेंगे कि इसमें चर्बी नहीं है, जूता पहनेंगे तो देख लेंगे इसमें किसी पशु की हिंसा तो नहीं हुई है, कुछ इतने बड़े पापी होते हैं पशु को काट करके खाते हैं या दूसरे का काटा हुआ खाते हैं, तो पेट में मांस है और पैर में उसी के चाम का जूता है और कोट भी चाम का पहने रहते हैं, ये पापी इस तरह पशु को खाकर सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। विचार करना चाहिए पहनने में कि किस चीज का बना हुआ है और किस चीज को मैं पहन रहा हूं, बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ऐसे दूसरे लोग भले समझे ना समझे लेकिन भक्त को ये बात जरूर समझनी चाहिए, कभी हमारे शरीर को पोषने के लिए पशु न बर्बाद किया जाए, उसका चमड़ा या उसका मांस हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर ये सब मंत्र मृद ग्रहण देना है, स्नान कैसे करे कह रहे हैं कि मिट्टी लगाकर करे और मंत्र स्नान भी करे। जब भगवान का स्मरण करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं तो यही है मंत्र। आपने देखा होगा भारतवर्ष में नदी में स्नान करते समय, गंगा जी में या कहीं कुएं पर भी, लोग जरूर सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण हे राम कहकर स्नान करते हैं, यह परंपरा है। कई भक्त तो स्नान करते हैं वृंदावन में चाहे कहीं भी, तो सबसे पहले कहते हैं तो श्री राधा कुल श्याम कुल मानसी गंगा जय गंगा, उनके मुख से हमेशा निकलता है स्नान करते समय, उससे शुद्धि होती है और खूब अच्छी तरह से शरीर को शुद्ध करे। इसके बाद संध्या वंदन करे, तिलक करके संध्या वंदन करे, अर्चन करे, इसके बाद तब भगवान को जगावे। तो आठ प्रकार की प्रतिमा होती है, भगवान यहां बता रहे हैं, शैली दारूमयी लौही लेप्या लेख्या चैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता। भगवान कहते हैं कि आठ प्रकार की मूर्ति बनाई जाती है मेरी, आठ प्रकार की प्रतिमा होती है। एक है शैली, शैल का अर्थ होता है पत्थर, शिला, शिला को पत्थर को शिला कहा है, तो शैली का अर्थ है पत्थर की बनी हुई मूर्ति, इसको शैली। और दारूमयी, दारू का अर्थ काष्ठ, काष्ठ से भी मूर्ति बनती है, जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म कहे जाते। लौही, लोहे की भी मूर्ति बनती है। लेप्या पेंटिंग, पेंटिंग चित्र बनाया जाता है। और लेख्या, दीवार या कागज पर लिख दिया जाता है। आपने देखा है कुछ फोटो ऐसा होता है जिसमें पेंटिंग नहीं होती है, केवल लकीर बना करके, उसको लेख्या कहते हैं। और चसाई कती अथवा बालू की मूर्ति, बालू को भी पानी में भे करके वो मूर्ति बनाई जाती है थोड़े देर के लिए, या मिट्टी से बनाई जाती है। मनोमयी, मन में भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करके पूजा करना है, भगवान का हाथ ऐसे है, पैर ऐसे है, मैं ये चीज दे रहा हूं, ये चीज दे रहा हूं, तो मनोमयी कहते हैं। और मणिमयी, और मणिमयी का अर्थ जूल से बना हुआ, मणि से बना हुआ, सोने से बना हुआ, चांदी से हीरा से बना हुआ भगवान की प्रतिमा थी। आठ हुई शैली, दारूमयी, लौही, लेप्या, लेख्या, शैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता। और इसमें भी दो प्रकार की होती है, चला चलेत द्विधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासावहने नस्त स्थिरायाम उद्धवाचने। हे उद्धव, मेरी मूर्ति भी दो प्रकार की होती है, एक चल और एक अचल। अचल जैसे हम लोग मंदिरों में देखते हैं स्थापित है, उसको हटाया नहीं जाता है। और चल मूर्ति वो है जो भक्त लोग ले करके कहीं जाते हैं। कभी कभी हमने देखा है, हम बॉम्बे से वृंदावन जाते हैं तो अपना शिव विग्रह लेकर के जाते हैं, वहीं पूजा करते हैं। छोटे छोटे ठाकुर जी, जैसे यहां के ठाकुर जी हैं, ये तो चल हैं, उनको लेकर के जाने में कोई भार भी नहीं है। तो ये चल मूर्ति है जिसको लेकर इधर उधर जा सकता है आदमी, या अपने मित्र को दे सकता है, किसी विशेष परिस्थिति में अपने संबंधी को दे सकता है, ले जा सकता है। तो चल मूर्ति और अचल मूर्ति, जैसा भी हो इस तरह से स्थापित करके मेरी पूजा करनी चाहिए। उसे बहुत विस्तार से भगवान ने समझाया है, परंतु मैं क्षमा चाहता हूं कि हम लोगों को लौटना है आज रात में, और सभी लोग को जाना ही है। कुछ लोग बाल्टीमोर से आए हैं, कहां कहां से, और न्यू जर्सी से, इसीलिए मैं यहां समाप्त करता हूं। लेकिन मैं आपको एक दिग्दर्शन कराया कि आप लोग यहां देख सकते हैं 27वें अध्याय में एकादश स्कंध के, कि भगवान ने कितना प्रमाणिक किस तरह से श्री विग्रह के आराधना की बात कहा। बहुत प्रमाणिक चीज है यह, और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसे हम लोग आ रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा, एक स्त्री ने कहा कि हाँ एक बात है कि भगवान के की पूजा करने से भगवान में प्रेम बढ़ता है। सामने ये तो है ना, सामने भगवान विग्रह के रूप में है, उनको का श्रृंगार करने में, खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में उनके साथ प्रेम बढ़ता है। तो इस तरह से अभ्यास करना चाहिए, रखना चाहिए श्री विग्रह। तो आज के दिन ठाकुर श्री कुंज राधा कुंज बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। बहुत पहले, कुछ वर्ष पहले ह्यूस्टन में उनका जन्म हुआ था, ऐसे अभिषेक किए थे हम लोग जन्म के समय पर। तब से नयनामृत प्रभु नगीन भाई इसकी पूजा करते हैं, और इनकी पत्नी कमला देवी। यही भक्ति है वास्तव में, जैसे घर में जन्मोत्सव मनाया जाता है वैसे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कुछ गीत गाना, प्रसाद खाना, भगवान को प्रणाम करना, तो तब तक भगवान का श्रृंगार हो रहा है, और श्रृंगार के बाद वो यहां आएंगे, उनको भोग लगाया जाएगा, भोग के बाद कीर्तन आरती होगी। अब तब तक सभी को फूल दिया जाएगा, आप सभी भगवान के चरण में फूल अर्पित कर करके प्रणाम करेंगे, और इसके बाद प्रसाद दिया जाएगा। हरे कृष्ण।